ओम शांति। एक रूप नंबर 5 है, उसका टाइटल है सर्व खजाने सफल करना ही सफलता प्राप्त करने का सहज साधन है। सभी अपने को सफलता मूर्त अनुभव करते हो। सफलता ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे अनुभव करते हो सदा सफलता सहज रहे उसका साधन व सबसे सहज विधि क्या है? निश्चय में भी मेहनत करनी पड़ती है, साथ निभाने में भी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे सहज साधन है सर्व खजानों को सफल करते जाओ, तो सफलता आप ही आपके आगे आएगी। सफल करना ही सफलता प्राप्त करना है, तो सफल करना आता है। अच्छा, समय को सफल करते हो तो उसकी सफलता आपको क्या मिलती है? जो यहाँ समय सफल करते हैं उन्हें सतयुग त्रेता तो क्या, लेकिन सारे कल्प का समय, या तो राज्य अधिकारी बनते हो या पूज्य अधिकारी बनते हो। यहाँ एक जन्म के समय को सफल करते हो तो कितनी जन्म के लिए समय सफल हो जाता है। वैसे जो भी खजाने मिले हैं उन खजानों को सफल करते जाओ। कितने खजाने हैं? तो सारे दिन में सभी खजाने सफल करते हो या कभी कोई करते हो कभी कोई करते हो? इस वर्ष में क्या करेंगे? सभी खजाने यूज करेंगे ना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। यहाँ कम नहीं होते हैं, बढ़ते ही है। तो सभी अपने को संतुष्ट मैया समझते हो, कभी असंतुष्ट तो नहीं हो जाते हो, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ी तीबड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है, तो जहाँ सर्व प्राप्तियां हैं वहाँ संतुष्टता होगी ही। इतने तक पढ़ना रात्रि को 12 बजे बाप दादा ने मोमबत्तियां जलाई तथा केक काटी, फिर सभी से मिलते हुए नए वर्ष की मुबारक दी। ये ग्रुप तो लकी है जो दिल से भी सभी दिल से भी नजदीक हो और नैनों से भी नजदीक बैठे हो। वैसे भी बाप दादा ने कहा कि सभी संतुष्टता के रत्न हो, सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। इसका गीत कौन सा गाते हैं? पाना था पा लिया। अच्छा, यूके को क्या वर्तन है? ओके, तो ओके है। औरों को भी ओके बनाते हैं या स्वयं रहते हो? अभी इस वर्ष में हर रोज किसी न किसी प्रकार से महादानी और वरदानी बनना ही है, तो सदा दूसरों की भी सेवा करते रहना। लंदन निवासी या यूके निवासी श्रेष्ठ भाग्यवान है जो विशेष आत्माओं की पालना मिलती रहती है, और सबसे पहले तुरंत दान महापुण्य मुरली भी लंदन में पहुंचती है। अनेक समाचार ऐसे होते हैं जो भारत वालों को नहीं पहुंचते हैं लेकिन लंदन में पहुंच जाते हैं, क्योंकि लंदन फॉरेन का पहला सेंटर खुलने का निमित्त बना। तो अभी लंदन वाले क्या करेंगे? सब सब्जेक्ट में नंबर 1। फिर भी बाप दादा सभी विदेश में सेवा करने वालों को मुबारक देते हैं कि मेहनत और उमंग अच्छी है, हिम्मत के कारण सफलता मिल रही है और आगे बढ़ते ही रहेंगे। हिम्मत सदा साथ रखना, जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप की मदद है। बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी। अभी बाबा कहते हैं सर्व खजाने सफल करना ही सफलता प्राप्त करने का साधन है। तो बाबा ने तो हम बच्चों को खजाने तो बहुत दे दिए हैं। कौन कौन से खजाने हैं? सबसे पहले तो समय और संकल्प का खजाना है, फिर
धन मन धन,
ज्ञान का खजाना है, कोणों का खजाना है, शक्तियों का खजाना है। इतने सारे खजाना दे दिया है, इतने सब खजाने बाबा ने दिया है। लेकिन बाबा ने कहा कि हम सभी ब्राह्मण बच्चे बहुत लकी है, क्योंकि बाबा ने हम सभी बच्चों को कहां कहां से निकाल करके एक दुनिया के इतने, बाबा ने एक बार कहा था कि ऐसी जगह से मैंने निकाला है, कचरे के डिब्बे में से निकाला है और एक पॉट में रख दिया है, और ये संगम एक ऐसी जगह है जहां बाबा ने ऐसे कल्प में कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा, सत्युग में त्रेता में द्वापर में कलयुग में ऐसा समय नहीं आएगा जहां एक साथ देवताएं इकट्ठे हो, एक ही संगम का समय है जहां 33 करोड़ देवी देवता एक साथ इकट्ठे तो होंगे। तो बाबा कहते हैं कि उसका सहज सफलता हमें कैसे मिलेगी, ऐसे तो बहुत सारे प्रोग्राम करते रहते हैं, लेकिन बाबा कहता है कि सबसे अपने को देखना है कि हमारा समय कितना सफल होता है, क्योंकि समय बहुत बड़ा धन है। और संगम युग की एक एक सेकंड, बाबा ने कहा कि एक एक जन्म से भी ज्यादा मूल्यवान है, तो एक एक सेकंड का महत्व या तो समय का मूल्य हमें होना चाहिए। तो समय किस प्रकार से जाता है, तो समय हमारा किस प्रकार से बीतना चाहिए, समय भी खजाना है और संकल्प भी खजाना है, क्योंकि समय और संकल्प वो साथ साथ चलता है। अगर संकल्प अच्छा है तो समय भी अच्छा है, संकल्प श्रेष्ठ है तो हमारा समय भी श्रेष्ठ बीतता है। लेकिन बाबा ने कहा कि जो एक खजाना है जो दिखाई देता है वो ज्ञान का खजाना है, तो ज्ञान हम सबको देते हैं मालूम पड़ता है, और ज्ञान जब देते हैं तो उस समय तो बहुत खुशी होती है, लेकिन जब हम यूज करेंगे तो ज्यादा खुशी होगी। इसलिए बाबा ने कहा कि ये जो खजाने हैं वो जितना हम यूज करेंगे उतना बढ़ता जाता है, अगर अपने अंदर रखेंगे तो क्या होगा। बाबा ने कल कहा कि जितना भंडारे खुले रखेंगे ना उतना बढ़ता जाएगा, कोई चोर लूट भी नहीं लेंगे, लेकिन अगर अंदर रखेंगे तो बाबा कहते हैं कि माया चोर लेगी। तो इसलिए ज्ञान का खजाना है वो तो गुप्त नहीं है, वो तो सबको देते हैं, खुशी उनको भी होती है हमें भी होती है, लेकिन ज्ञान का खजाना माना क्या है, बाबा ने जो ज्ञान हमें दिया है उसका स्वरूप बनना है। दूसरा है कि गुणों का खजाना, रोज रोज हम सुनते हैं गुणों के बारे में और बोर्ड पर भी लिखा हुआ है इतने सारे गुण, तो बाबा कहते हैं कि गुणों का खजाना तो हम किसी को दे नहीं सकते हैं, लेकिन अपने स्वरूप से उसका अनुभव कर सकते हैं। गुणों की चिंतन करेंगे, गुणों के लिए हम अगर लिखने बैठेंगे तो बहुत सारा लिख सकते हैं, लेकिन उसका अनुभव हमारे साथ वाले को, हमारे परिवार वालों को, ब्राह्मण परिवार को हो, इसलिए बाबा ने कहा है कि सबसे ज्यादा से ज्यादा संतुष्टता वो बहुत बड़ा खजाना है। और संतुष्टता का जो सर्टिफिकेट है, 3 सर्टिफिकेट है, सबसे पहले है स्वयं संतुष्ट, स्वयं स्वयं से संतुष्ट। तो किस में संतुष्ट, जो भी चीजें मिलती है प्राप्ति मिलता है उसमें, उसकी बात तो बाबा नहीं करते हैं, लेकिन बाबा करते हैं जो हम पुरुषार्थ करते। कभी कभी ऐसा लगता है बाबा ने कितना हमें कहते हैं लेकिन हम इतना नहीं कर सकते हैं, तो स्वयं से स्वयं हम कहते हैं लेकिन अंदर से हम संतुष्ट नहीं रहते हैं, लगता है कि बाबा ने हमें इतना कहा है और हम इतना कर नहीं पाते हैं, तो तीव्र पुरुषार्थ
इसमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए।
हम है ना तो तीव्र पुरुषार्थ में जुड़ गए हैं। दूसरा है कि सबको देखते देखते भी हमें याद आ जाता है कि ये हमारा एक रूप है, इसलिए तो सबसे पहला सर्टिफिकेट है स्वयं से संतुष्ट। दूसरा है कि किससे संतुष्ट हैं, परिवारों से। तो अपना लौकिक परिवार की तो बात ही नहीं है, लेकिन ब्राह्मण परिवार में ब्राह्मण परिवारों से संतुष्ट और ब्राह्मण परिवार हमारे से संतुष्ट बहुत बड़ी बात है। उसका सर्टिफिकेट बहुत कम मिलता है। स्वयं का सर्टिफिकेट तो हम ले लिया चलो पुरुषार्थ करके, लेकिन ब्राह्मण उसमें भी जिसके साथ रहते हैं उसका सर्टिफिकेट तो लास्ट तक बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो सबसे जास्ती उनको देखते हैं कि हम हमारे जैसे करीब होते हैं, तो उसको हमारा मालूम होता है कि हम तो वहां से सर्टिफिकेट इतना जल्दी नहीं मिलता है। तो जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेट लेना है ना, तो उसके साथ रहते हैं तो क्या क्या हमें कहते हैं शांति से सुन करके वहां हमें चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी चैलेंजेस है। पर सबको ऐसा लगता है, नहीं लगता, लेकिन हमें तो लगता है कि वो सर्टिफिकेट लेना थोड़ा मुश्किल है। और लोकप्रिय बनना, उसमें तो हमने देखा है कि जो आते हैं ओम शांति भवन में, हम एक दिन गए थे, कभी कभी जाते हैं तो ऐसा लगता है जिसको सुनाते हैं वो तो बहुत खुश हो जाते हैं, प्रभावित भी हो जाते हैं, लेकिन वो तो दूर के है ना, क्योंकि ये हमको नजदीक से जानते नहीं है, इसलिए जितना हम बोलते हैं ना तो उसको अच्छा अच्छा लगता है, उसको लगता है पूरे संपन्न हो गए हैं। लेकिन हम जानते हैं हमें कितना करना बाकी है। तो वो जो इतने सारे हम जो सुनाते हैं लोगों को, लेकिन बाबा कहता है फिर भी हम दूसरों के नजरों में जब हम साथ में रहते हैं तो मालूम पड़ता है। तो लोकप्रिय बनना इसका मतलब ऐसा नहीं कि लोगों के साथ इतने बड़े बड़े भाषण करके लोग हमारे से खुश हो जाए, ब्राह्मण परिवार हमारे से खुश हो जाए।
बाबा बोला है कमरे में जो रहता है
उससे तो ज्यादा से
ज्यादा सर्टिफिकेट लेने,
वो अगर खुश हो जाए ना तो हमें संतुष्ट फटाफट मिल जाए। लेकिन वो उसको संतुष्ट करना, क्योंकि वो हमारे लिए ना वो समझते है ना कि वो हम संपूर्ण बन जाए, तो हमारे लिए सबसे पहली बात वो है कि वो अगर संतुष्ट हो जाए हमारे से तो समझना कि हमें जल्दी से सर्वगुण संपन्न बन गए, ऐसे समझना चाहिए। और तीसरा है बाप से संतुष्ट, बाप हमारे से संतुष्ट हो जाए कैसा लगता है, कैसा लगता है?
बाप तो पहले संतुष्ट
होता है, तो बाप तो क्या है? अभी तो आपको पता होगा कि बाबा है ना, उसने अभी तो जैसे जब आया था ना तभी तो शुरुआत की बात, तो शुरुआत में जो पट्टी चली थी, शुरुआत में जो 14 साल की पट्टी चली उसमें बाबा साथ साथ रहता था, एक सेकंड भी लोगों को नहीं छोड़ता था, क्योंकि बच्चे थे ना तो बाबा बहुत समय बाबा रहता था। उसके बाद हमने अभी देखा कि बाबा तो आता है आधे घंटे में चला जाता है, और अभी है ना उसके पहले हमने देखा बहुत साल तक बाबा होमवर्क देता था, और इतना जल्दी जल्दी होमवर्क देता था ना कि हम कर भी ना पाते और दूसरी मुरली आ जाती थी, इतना फास्ट जाता था। तो होमवर्क देता था और मांगता था कि अभी हम दूसरे बार ये होमवर्क को करेंगे, लेकिन अभी तो बाबा ने वो भी छोड़ दिया। अभी तो बाबा ना होमवर्क की बात करता है ना बस एक ही बात करता है कि आप बच्चे मेरे समान बन जाओ, सर्वगुण संपन्न बन जाओ। तो ऐसा लगता है जैसे बाबा ने समेटना शुरू कर दिया
होमवर्क
देता है, देता नहीं। है ना, हमने है ना तो बहुत कुछ कह दिया है, अभी आपको जो करना है कर।
बच्चे बड़े है, बड़े हो गए इसके होमवर्क देता नहीं है,
बड़े बच्चे बन गए ना इसलिए बाबा तो अभी समझता है कि सब समझदार बन गए हैं, इसलिए कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा भी है ना जब जाने का समय हो गया है तो इसलिए बाबा समय की सूचना भी देता रहे, थोड़ी थोड़ी सबको हिलाते भी रहता है ना, लेकिन रक्षा भी करता है। देखो कहीं भी भूकंप आता है, बाढ़ आती है तो क्या करता है, ताकत भी तो दे देता है ना, और फिर क्या करता है बाबा के बच्चों को थोड़ा थोड़ा बचा भी देता है, लेकिन हिलाता इतना है ना कि ऐसा लगता है उसी समय गिर जाएंगे, लेकिन बाबा की तकता बहुत करता है। और हमने ये देखा है कि बाबा को हम जब याद करते हैं तो बाबा ऐसा नहीं कि हमारी, बाबा ने कई बार कहा हम जो याद करते हैं तो याद करते करते हम जमा तो करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा अनुभव होता है कि जमा करते हैं लेकिन बाबा उसी समय कोई शक्ति की जरूरत थोड़ी थोड़ी पड़ती है तो बाबा नहीं देता है, हमें अपना स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन हमने देखा कि बाबा जैसे रोज याद करते हैं तो बाबा ने कहा था एक बार कि अब एक बार याद करते हैं तो उसके आगे जीरो होता है, दूसरी बार याद करते हैं उसके आगे और जीरो होता है, तो हमारा जमा तो ईश्वरीय बैंक में होता है। लेकिन जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना गुल्लक में जो पैसा डालते हैं तो फिर बहुत समय के बाद पूरा गल्ला भर जाता है। तो यहाँ बाबा ने कहा है कि जब भी कोई छोटी छोटी परिस्थिति आती है ना तो बाबा हमें स्वयं पुरुषार्थ करने के लिए कहता है। लेकिन कई लोगों के जीवन में हमने देखा बहुत बड़ी परिस्थिति आती है तो बाबा वो ईश्वरी बैंक से छोड़ता है शक्तियां, तो उसकी हलन चलन और कम होती है, नहीं होती है, हमको लगता है कैसे हो गया ऐसे। कई लोगों को हमने देखा है कि जीवन में इतनी शक्ति नहीं होती है, लेकिन ऐसा इसके जीवन में जब चैलेंजेस आती है ना तभी वो व्यक्ति इतना अच्छा लगता है। तो बाबा हमें शक्तियां तो देता है लेकिन यूज हम कर लेते हैं तो फिर हमारी शक्तियां कम हो जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि शक्तियों का खजाना, तो शक्तियां तो बहुत प्रकार की है ना, शक्तियां जो घर संसार में जो रहते हैं उसको जो शक्तियों की जरूरत पड़ती है, हमें भी पड़ती है। सहन शक्ति की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती, पड़ती है।
सर्विस करते थे उस समय कैसे बाबा ने आपको मदद किया है?
बाबा ने तो मदद हर पल की है, वो तो अनुभव की बात बताऊं तो एक खजाना की बात रह जाएगी। तो
अनुभव भी एक
तो क्या है कि उस समय है ना तो हम ऑफिस में जाते थे तो हमको ऐसा था कि हम नौकरी छोड़ देंगे। हमने दीदी को बोला अभी हम सरेंडर हो गए हैं, बहुत बंधन था घर से, हमको माँ बाप आने ही नहीं देते थे, हमको लगता था कि ये अच्छा नहीं है क्योंकि वो जानते नहीं थे संस्था को और हम छिप छिप के जाते थे। और एक बार ऐसा है कि हम भट्टी में गए और हम वापस गए ही नहीं है, हमारे साथ त्रिवेणी बहन भी थी, उनका और हमारा बिल्कुल ही साथ साथ घर था, एक ही दीवार थी, वहां से हम चले यहाँ तक साथ आए हैं। अब देखो तो ऑफिस हमारी एक, कॉलेज हमारी एक, सब एक था, तो दोस्त भी हमारी थी और तो हम साथ साथ चले। तो उसी समय क्या हुआ था कि हम सेंटर पे रहते थे तो दीदी को हमने बोला हम छोड़ देंगे, बाबा कहते नौकरी टोकरी छोड़ दो, और कहते दीदी कहते नहीं नहीं ऐसी क्यों बात करती हूँ, क्योंकि टेलीफोन एक्सचेंज में तो क्या थे कि बहुत सारा पैसा उस समय, मतलब एक होता था ना बहुत, एक एक मिनट का बहुत पैसा होता था। दीदी के नहीं नहीं तो ऑफिस में जाती है तो बहुत मदद हो जाती है, तुम छोड़ो नहीं तो मुझे है ना, तो कहते तुम ड्यूटी नाइट करो, तो मैं 5 बजे से 12 बजे तक की ड्यूटी लिया था। उसके पहले वहां वो टेलीप्रिंटर था हमारे पास, तो दीदी को और हम दोनों सीखे थे, मैं जब नहीं थी तो दीदी चलाती थी, तो दीदी नहीं थी तो मैं चलाती, तो मेरी गलतियां भी बहुत होती थी, मैसेज में भी गलतियां होती तो दीदी सुधार लेती थी। जब आती थी तो दीदी कहती नहीं थी कि तुमने ऐसा किया ऐसा किया, मुझे कभी ऐसा नहीं बोलती थी, लेकिन स्ट्रिक्ट बहुत थी, इतनी स्ट्रिक्ट थी ना तो हम डर जाते थे तो, लेकिन नहीं लेकिन प्यार भी बहुत करती थी। अगर हम मैं कभी कभी नहीं ले जाती थी लंच बॉक्स तो दीदी ऑफिस में भेजती थी, तो मतलब प्यार भी बहुत करती थी लेकिन डिसिप्लिन बहुत थी। और वो डिसिप्लिन से हम यहाँ पहुंचे तो हमको बहुत अच्छा लगा था कि इन जैसी ट्रेनिंग कोई भी नहीं दे सकते हैं संसार में, ऐसी ट्रेनिंग तो अभी दीदी कहती है कि अभी मैं किसी बहन को कुछ भी नहीं बोल सकती, ऐसी ट्रेनिंग हमें दी थी दीदी ने। तो हम जब ऑफिस में जाते थे तो 5 बजे जाना होता था, तो 5 बजे तक हम वही सेवा करते थे, कभी कभी लेट भी हो जाता था ऑफिस में, लेकिन ऑफिस में सबके साथ थोड़ी अच्छा था तो वो लोग हमको कुछ बोलते नहीं थे, जो भी जितने भी समय पर आते थे हमको ले लेते थे ड्यूटी पर, और जो भी ड्यूटी चाहिए ना वो ड्यूटी भी हमको बाबा के कारण सेटल कर देते थे, जहां छुट्टी चाहिए ना वहां दे भी देते थे, ये बाबा की मदद थी हमको। लेकिन हम 12 बजे आते थे तो क्या होता था, हम स्कूटर लेके जाते थे, कभी कभी रास्ते में बिगड़ जाता था, तो बिगड़ जाता था ना, तो लूना था, एक बार एक्सीडेंट थोड़ा थोड़ा हो गया था तो बराबर चलता नहीं था, तो रास्ते में बिगड़ जाता था, 12 बजे 1 बजे आते आते बिगड़ जाता था, तो जहां भी होता था बांध करके आ जाते थे। दीदी कहती थी स्कूटर नहीं लाई, मैंने बोला नहीं दीदी वहां बांध दिया, बाबा को बोल दिया, बाबा संभाले, तुमको अक्ल है कि नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है, सब ले जाएंगे। लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हमको ऐसा था, बाबा कहता मैं संभालूंगा। कितनी बार हमने ऐसा किया था, कितनी बार वो भी सुबह में भाई लोग जाकर के ले आते थे। एक बार क्या होता था, हम जब आते थे तो हमको थोड़ा 12 बजे डर भी लगता था, तो हमने और दीदी को एक बार बताया था कि 12 बजे की ड्यूटी में उनको थोड़ा थोड़ा डर लगता है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा भी हो जाता था। तो एक बार क्या हुआ कि दीदी ने भोग लगाया होगा, मैं ऑफिस में थी, तो कैलाश दीदी वहां गई थी, भोग लेकर के गई थी, तो दीदी ने पूछा उसको, और मैं जब स्कूटर चलाती थी तो अमरबेन भी संदेशी थी, उसको मैं हमेशा कहती थी ना बाबा को मैं कभी भी आगे नहीं बिठाऊंगी, मुझे थोड़ा चलाने का अभिमान भी था, मैंने कहा बाबा को किसी को भी आगे नहीं बिठाऊंगी, मेरे आगे कोई भी नहीं होना चाहिए, मेरे पीछे जो भी बैठना है बैठे। तो फिर दीदी है ना, तो मेरे भोग का संदेश लगा, उसके बाद काइनेटिक भी आ गया था, तो काइनेटिक में तो दो लोग बैठते थे पीछे, तो दीदी ने भोग का संदेश लगाया, उसके पहले मैं हमेशा अमरबेन को कहती थी मैं एक तो पीछे किसी आगे नहीं बिठाऊंगी, और दूसरी बात मैंने उसको कभी नहीं बताई थी, लेकिन मैं करती थी, लेकिन मैं नई नहीं थी उस समय, तो मैं क्या कहती थी बाबा को, बाबा कहते थे कि मेरे को यूज करो, तो मैं बाबा को आह्वान करती, बाबा मेरे स्कूटर पे बैठ जा पीछे, तो जो लड़कियां बैठने वाली थी ना उसको मैं कहती थी थोड़ी जगह रखना, तो लोग हंसते थे मुझे, और मैं भी ऐसे कोई सीरियसली नहीं कहती थी, लेकिन मैं बाबा को रोज बुलाती थी। अरे मुझे तो नहीं पता था बाबा आके बैठता है नहीं बैठता है, मैं इतनी नई, बाबा मुझे, मैं समझती हूँ मुझे कैसे पहचानेंगे, ये तो बड़े बड़े 30-30, 40-40 साल वालों से बाबा को बहुत प्यार होता है, क्योंकि वो जितने सालों से बाबा उनके हैं, हमारे तो नए नए हैं, हमारी क्या होगी बाबा को वैल्यू, ऐसा मैं समझती थी उस समय। तो फिर दीदी ने जब संदेश कैलाश बहन को पूछा कि आप बाबा के पास जाओ और बाबा को कहो कि ये इसकी ड्यूटी चेंज कराए या क्या कराए, तो कैलाश दीदी का संदेश आया था, तो सबसे पहले इसने बताया कि दीदी बाबा कहता है कि ये रोज मुझे बिठाती है पीछे, तो इसलिए उसको कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि रोज ही मुझे बिठाती है। तो दूसरा अमर बहन ने एक दीदी एक कैलाश बहन को जाते समय बोला था ये कि ये है ना बहुत इसको अभिमान बहुत है, इसलिए उसको बोलना कि वो बाबा को आगे बिठाना चाहे बाबा को पीछे बिठाती, वो भी पूछ के आना। तो बाबा को जब पूछा तो बाबा ने ऐसा जवाब दिया, बाबा ने कहा कि बच्ची है ना बाप तो बैकबोन है, बाप तो सदैव पीछे रहता है, बच्चे आगे रहते हैं, इसलिए बच्चे मुझे बच्ची है ना रोज पीछे बिठाती क्योंकि मैं बैकबोन करके तो संभाल करूं। तो दो बातें जब कही, तो मैं दूसरे दिन रात्रि को 12 बजे आ गई सो गई, दूसरे दिन मुझे दीदी ने बुलाया और सभी के बीच में बुलाया किधर, तो सभी आके बैठ गए 10 बजे, कहती है ये है ना रोज किसी को बिठा के लाती है, तो सभी कहते हाँ हाँ बाबा ने बोला इसको सबको बिठा, ये किसी को बिठाती, मैं कहूँ मैं दो बहनों को बिठाती हूँ, कह रही नहीं तो कोई भाई को भी बिठाती है, मैं तो डर गई नहीं थी, मुझे ऐसा लगा अरे मेरे को निकाल देंगे ये तो, क्योंकि उस समय तो है ना किसी से बात बहुत नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा कि अरे नहीं दीदी मुझे ऐसा करेगी तो मैं बहुत डर गई, तो डर गई तो ऊपर जाके मैं सामान थोड़ा ठीक करने लगी कि मुझे अगर कहे तो उस समय मेरे में ताकत नहीं होंगी कि सामान लेके घर जा, तो मैं ऐसा किसने बोला होगा, तो ये 25 से 25 लोग बहुत सीरियस थे, जो हमारे वहां बहने ज्यादा थी, 5-7 भाई थे, तो सभी ने बोला हाँ हाँ दीदी बाबा ने कहा तो जरूर बिठाती है, लेकिन बाबा है ऐसे कैसे करता है, कैसा बाबा है, उसको तो एक दिन भी मैं तो नहीं रहूंगी यहाँ, अभी मैं तो जाऊंगी, ऐसे मैंने मन में ठान लिया और मैं चली गई, और कमरे में गई तो दीदी ने मुझे आधे घंटे के बाद बुलाया, तो मैंने कमरा बंद कर दिया था, खोलती नहीं थी मैं क्योंकि मैं समेट रही थी। तो दीदी ने बोला इसे बुलाओ बुलाओ ये क्या कर रही है, फिर बहुत ही आलस किया, फिर मैं अंदर से बाहर आई, मेरे आंखों में आंसू था, दीदी कहती तुम क्यों, मैंने बोला मैं किसी को नहीं बिठाती और आपने मुझे ऐसा बोला, इसलिए अभी मेरे को यहाँ रहने की जरूरत, बाबा भी मेरा नहीं है कोई भी मेरा नहीं यहाँ, तो इसलिए तो हंसने लगी। फिर वो जो सीधी थी ना उसने तभी मुझे नहीं बताया था, उसने चलाया कि देखो रिकॉर्डिंग तुम सुनो। तो मैंने सुन के मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा अंदर से बहुत ही फील हो गया कि बाबा देखो मुझे, मैंने जिसका एहसास भी नहीं किया था और मैं ऐसा समझती भी नहीं थी बाबा मेरे स्कूटर पर बैठेगा, लेकिन बाबा रोज बैठता था, इतना अच्छा संदेश दिया। और मैं जितना मेरे को अभिमान था, लेकिन बाबा ने मेरा अभिमान को क्या किया, बहुत पॉजिटिव ले लिया। तो मुझे यार इतना प्यार हो गया, मैंने बोला अभी तो बाबा तो सबकी रक्षा करते हैं। और फिर मैंने ऑफिस में जाके ये कैसेट थी, कैसेट बताई सबको। तो हम उस समय 25 से 30 बहने थी ना, उस होटल लेके आती थी, तो सभी ने बोला कि तो बहुत अच्छा है, मैंने तुम्हारे बाबा को पीछे बिठाई। तो मैंने बोला कि आप ऐसा कहो मेरा बाबा, तो क्या नहीं नहीं हम तो उसको पहचानते नहीं, वो भी हमको नहीं पहचानते, हम तो तुम्हारे बाबा को बिठाएंगे। तो फिर दूसरे दिन दीदी को मैंने बताया, दीदी ऐसा ऐसा कहते, दीदी कहते तो शिविर रख ले वहाँ, वो विजया बहन सिद्धपुर वाली थी, वो पहले वहां रहती, तो ये कराएगी। तो हमारे ऑफिस में ऐसा प्रोग्राम करती है। और दूसरा एक एक ऐसा अनुभव है कि मैं राजयोग में रहती थी, तो उसमें छाया भाई था ना, छाया भाई उसका है ना, तो कुछ पर्स घूम गए, उसको डॉक्यूमेंट था, बहुत कीमती कीमती चीजें थी, तो वो किसी ने ले लिया था, तो मिलता नहीं था। तो दीदी ने बोला, दीदी तो तुरंत है ना बाबा को कैलाश बहन को भेज दी दीदी ऊपर कि जाओ जाके आओ। तो बाबा ने क्या बताया, बहुत ही वंडरफुल बाबा ने बताया कि बाबा कहता है कि मिल जाएगा 3-4। तो दीदी फिर से उसको भेजा कि नहीं नहीं किसने लिया है बताओ। बाबा ने बोला कि 3-4 दिन में जिसने भी लिया है उसने वो रख देगा। तो दीदी क्या कहती है, हमको कहती है आप कमरे से बाहर जाओ, अमर बहन को कहती कमरे से बाहर जाओ, कोई आएगा रखेगा। तो 3-4 दिन हुआ ना, तो कितना भी ये किया लेकिन किसी ने रख दिया। तो दीदी को अंदर से हुआ बाबा के पास भेजा फिर से, बाबा बताओ, क्योंकि हम सावधान रहे। बाबा ने जवाब दिया, बाबा ने कहा बाबा है बच्चों की लाज रखता है, बाबा कभी नहीं बताएगा। और व्यक्ति जिसने लिया था उसको इतना महसूस हो गया, इतना महसूस हो गया कि अरे रे उसने जाके बताया बाबा मैंने लिया था। तो दीदी कहती है देखो बाबा कितना ये है, बाबा ने कह दिया कि मैं बच्चों की लाज रखता हूँ, मैं बच्चों की दाढ़ी की लाज रखता हूँ, मैं बच्चों को कभी भी ऐसा, अगर उस समय बाबा ने बताया तो व्यक्ति आज नहीं होता, मतलब उस ज्ञान में नहीं चलता। तो बाबा ऐसा ऐसा काम करता है। ओम शांति। सुनो अभी 10 मिनट है ना, सब आपका भी सुनने के लिए बैठे होते हैं, इसलिए प्लीज
पूरा सुन लो,
बाकी है।
केक तो आज लाया नहीं, खिलाएंगे ना, केक लाना तो चाहिए था ना।
अभी बाप दादा ने विदाई के समय ऐसे, तो मेरे कहा यहाँ में 92 में बाबा के यहाँ में मधुबन में दादी ने मुझे बोला ही, लेकिन 92 से मैं सभी दादियों के बहुत करीब रही हूँ, आकाशमणी दादी से, शांतम, जितनी भी दादियां हैं उनसे मैं बहुत करीब रही हूँ, कोई भी दादी से मैं जरा भी दूर नहीं रही हूँ। तो सभी का ऐसा ऐसा मुझे मंदिर होता है, आज मैं कभी मैं ऐसे विचार सागर मंथन नहीं किया, लेकिन आपने मुझे क्लास करना, तो रात को मैं इतनी बार मेरी आंखों में आंसू आ गया कि मुझे देखो इतनी दादियों की कितनी पालना मिली और कितने कितने गुण थे उसमें। तो मुझे है ना, तो मैंने बोला मैं सुना सकूंगी कि नहीं सुना सकूंगी, ऐसा उनको उनके साथ का जो अनुभव था, ऐसा अनुभव था कि मुझे ऐसा लगा कि मैं नहीं सुना सकूंगी, मुझे अगर कहेंगे तो मैं रो पड़ूंगी। ऐसा मतलब कि बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव मुझे, गुलझर दादी के साथ हम 11-11 बजे तक बैठते थे रात्रि को, प्रकाशमणि दादी के साथ बैठते थे, चंद्रमणि दादी के साथ हम दोपहर में जाते थे जब ये सोने का होता था, उनके पास जाकर बैठते थे, इंद्रप्रस्थ में रहती थी, शांतामणि दादी के पास रहते थे, कभी कभी उसका फ्रैक्चर हो गया था हम उनके साथ रहे थे। तो इतनी इतनी उनकी वो ये जो दादियां हैं उसमें मैं समझती हूँ कि ऐसा कोई भी व्यक्ति आज हम नहीं देखते हैं, इतने अच्छे गुण मुहूर्त देखता हूँ, हर बात में पॉजिटिव, हर बात में पॉजिटिव, कोई भी बात कैसी भी आएगी ना, हम जब कहेंगे ना हमारी बात नहीं लेकिन किसी की भी बात, लेकिन दादी इतनी पॉजिटिव में जॉब देती थी, हमको लगता था इतनी गुणों की मूर्त थी, और हमने उसको कभी ऐसे पुरुषार्थ करते देखा नहीं है कि ऐसे कोई योग लगा रहे है या कोई ये कर रहे, ऐसे हमने देखा नहीं, उनका ऐसा सरल पुरुषार्थ था। तो वो भी बहुत वंडरफुल अनुभव है। नहीं, 14 साल उन्होंने मेहनत क्या किया है, और बच्चे थे उस समय, 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के, वो मेहनत नहीं थी उनकी, बाबा ने तो उसको है ना तो कितना पालना दी है, कितना प्यार दिया है, और प्यार में और पालना में उन्होंने जो किया उनको महसूस नहीं हुआ कभी मेहनत का, प्रसाद का भी मेहनत का अनुभव नहीं। तो हम दादी प्रकाशमणि को जब उसके पास जाते थे 5 बजे गार्डन में बैठती थी, तो हम कहते थे दादी आप क्या प्रसाद करते हो, उनको बता मुठ्ठी तुम क्या बोलती हो मुझे ऐसा बोलती थी। तो इतनी सरल, इतनी सारी दादियां जो लिखाई देती लेकिन अंदर से इतनी सरल है, इतनी सरल थी कि इतना सरल कोई नहीं हो सकता है बाबा की, इतनी मणियां जो है। अभी पढ़ती हूँ नहीं तो बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को नए वर्ष की मुबारक दी, चारों ओर के सर्व बच्चों के नए वर्ष के उमंग उत्साह के यादगार और अच्छी अच्छी गिफ्ट भी पाई। बाप दादा सभी बच्चों को पद्मा पदम, भाग्यवान आत्माओं को पद्मा पदम गुना यादगार दे रहे हैं, इस संगम युग की और नई दुनिया की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। जैसे नए वर्ष के आरंभ में उत्सव मनाते भी है और साथ साथ एक दो में मुख भी मीठा करते हो, तो आप सभी कौन सी मिठाई खिलाएंगे, हर समय हर दिन सभी को दिल खुश मिठाई खिलाते रहना। ये मीठा तो सभी खा सकते हैं ना, खाते भी रहना और खिलाते भी रहना। सदा जिस भी आत्मा के सदंत संपर्क में आओ तो पहले मुस्कुराते मिलना और फिर दिल खुश मिठाई खिलाकर मिलते रहना। और गिफ्ट क्या देंगे, गुणों की गिफ्ट देना, शक्तियों की गिफ्ट देना। आपके पास बहुत गिफ्ट तो है ना, स्टॉक है, तो खूब गिफ्ट बांटते रहना। सदा उमंग उत्साह में उठते रहना और उड़ाते रहना। नए वर्ष की गुड मॉर्निंग, ओम शांति।
टाइम हो गया नहीं।